بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. آج جس موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بنیادی موضوع ہے مکتب اہل بیت کے حوالے سے. اس کی وابستگی بنیادی طور پہ عقیدہ امامت سے ہے، اور عقیدہ امامت میں بھی ایک خاص پہلو کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو عقیدہ امامت ہے اس کے بھی بہت سارے پہلو. ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے کہ جو تاریخ سے وابستہ ہے، ہم سے اس کی زیادہ وابستگی نہیں ہے، لیکن ہم سے جو زیادہ وابستگی ہے وہ ہے اس موضوع سے، رسول اکرم کے بعد جو ہم انسان آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے مسلمان، ان کو بھی دین پہ عمل کرنا ہے. اب یہ دین، دینی احکامات، دینی معرفتیں صحیح طور پہ ہمیں ملیں گی تو ہم اس پہ عمل کر سکیں گے، اگر نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر پائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد، ان کی وفات کے بعد، قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو دین پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، وہ کیا ہے. اس میں ایک نظریہ مکتب اہل بیت کا ہے، شیعہ نظریہ ہے، ایک برادران اہل سنت کا نظریہ ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں نظریات کیا ہیں، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، اس میں پھر جو ہے ان کے دلائل کیا ہیں، اور پھر ہم آئیں گے کہ شیعہ نظریہ کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں. چونکہ ہم یہ تین درس ہیں ہمارے جو آج سے شروع ہوں گے، کل اور پرسوں جاری رہیں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان بحث کو ایک تو مختصر رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ عملی رکھیں، جو عملی ہمیں چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں. صرف ایک علمی اور نظریاتی بحث کی طرف نہیں جائیں گے کہ جو اپنی جگہ پہ فائدہ تو رکھتی ہیں لیکن ہمارے عمل سے وابستہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ رکھیں کہ جو ہمارے عمل سے وابستہ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ عملی بحث کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اختیار کریں. تو ہم اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آج ہم اس میں جو برادران اہل سنت کا نظریہ ہے اس کو پیش کریں گے، ان کے دلائل دیکھیں گے، ان کا ایک مختصر جو ہے تجزیہ کریں گے، اور کل پھر ہم دیکھیں گے کہ شیعہ نظریہ کیا ہے، مکتب اہل بیت کا نظریہ کیا ہے، اور اس میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کیا نظام پیش کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید بنیادی طور پہ ہدایت کی کتاب ہے. چاہے وہ کہا جائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت، یا کہا جائے کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. جب ہدایت کی کتاب ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا کوئی نظام ہی پیش نہ کرے. تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم دیکھیں وہ کیا ہدایت کا نظام پیش کرتا ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ عملی جو پہلو زیادہ وابستہ ہے وہ ہے امام اور غیبت کے حوالے سے، کہ اگر ہم نے یہ قبول بھی کر لیا کہ इमाम का, रसूल अकरम का हर दौर में एक इल्मी जानशीन इमाम होना चाहिए। तो गैबत के बाद तो बिरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कि आप और हम बराबर हो गए, इसलिए कि इस वक्त हमारे पास भी किताबें हैं और रावी हैं, और उनके जरिए से हम पहुंचते हैं रसूल अकरम तक, और आपके पास भी किताबें हैं, रावी हैं, उनके जरिए से आप पहुंचते हैं आइम्मा अहले बैत तक, या उनके जरिए से नबी अकरम तक। इस वक्त तो दोनों बराबर हो गए, एक आपके पास भी किताबें, हमारे पास भी किताबें, आपके पास भी गैर मासूम रावी है, हमारे पास भी गैर मासूम रावी, तो आखिर फिर फर्क क्या है? और इसमें अहम तरीन एक चीज जो है वो ये भी है कि जब इमाम गैबत में है तो फिर हुज्जत कैसे? हुज्जत तो इमाम जाहिर होगा, जब जहूर हो उनके पास, हम इल्मी मसाइल लेके जाएं और वो इल्मी मसाइल में रहनमाई करें, तो उनकी वो इल्मी रहनमाई हुज्जत है हमारे लिए। लेकिन अगर हम जो है वो इमाम को गायब तसव्वुर कर लें तो फिर हुज्जत कैसे? ये गैबत और हुज्जत आपस में कैसे मिल सकते हैं? तो ये अमली बहस जो है आखिरी हमारी बहस होगी जो आखिरी दिन है, आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। तो ये जो बहस है ये हमारे अमल से वाबस्ता है, हमारी फिक्र से ज्यादा अमली बहस है हमारी, कि हम दीन कहाँ से हासिल करें ताकि एक मुतमईन तरीका हो हमारे पास दीन हासिल करने का, और हम उसके जरिए से नबी अकरम तक पहुँचें और उनके जरिए से खुदा तक पहुँचें और दीन पर अमल करें ताकि कामयाब हो सके। अब इसको जो है वो आपकी खिदमत में तीन हिस्सों में हम जो है बयान करेंगे, तो शुरू करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसी नतीजे तक जो है हम पहुंच पाए। ये इल्मी जानशीनी के हवाले से जो है ऐसे हमारी ये नबी अकरम की इल्मी जानशीनी, एक उनकी सियासी जानशीनी है। सियासी जानशीनी हमारा मौजू बहस नहीं है, हमारा मौजू बहस इल्मी जानशीनी है, दीनी जानशीनी है। सियासी हुक्मरान, सियासी जानशीनी हमारा मौजू बहस इस वक्त नहीं है, वो एक बहस है लेकिन इस वक्त हमारे हमारे पास जो मौजू बहस है वो इल्मी जानशीनी। तो इसको हम इस तरह से पेश कर सकते हैं, देखें जो इमामत के हवाले से शिया नुक्ते नज़र है वो ये है कि इमामत के तीन शोबे हैं। एक तो वसीले फैज़ है, अल्लाह तबारक तआला से फैज़ बाकी मखलूक तक पहुंचना, जिसको कुरान मजीद ने रहमत लिल आलमीन कहा है कि आलमीन के लिए रहमत, ये वसीले फैज़ जो है वो इमाम होता है। दूसरा शोबा जो है इल्मी जानशीनी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन कहाँ से लेना है हमने, और अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मी मरकज जो है कौन सा बनाया है रसूल अकरम के बाद, ताकि उससे जो है दीन और इल्म लें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बनाएं ताकि कामयाब हो सके। तीसरा शोबा जो है सियासी मरकज है, सियासी जानशीनी है, और सियासी लीडर या सियासी जिसको कहते हैं कि सरदार या अहले सुन्नत की जो इस्तलाह है उसमें खलीफा, ये तीसरा शोबा है। लेकिन अहले सुन्नत बरादरान जो है वो रसूल अकरम की जानशीनी सिर्फ और सिर्फ सियासी शोबे में मानते हैं, न वसीले फैज़ में मानते हैं न इल्मी मरकज में। वो कहते हैं कि रसूल अकरम का जो भी फर्द जानशीन होगा, एक शख्स जानशीन होगा, सिर्फ और सिर्फ सियासी जानशीन होगा। ये फर्क है बुनियादी जो शिया और सुन्नी में है। ये जो बाद के फर्क हैं कि उसको मासूम होना चाहिए, खुदा की तरफ से होना चाहिए, ये इसी बुनियाद पे है, बुनियाद सबकी यही है। फर्क जो यहाँ से होता है वो यहीं से होता है कि इमामत का, इमामत की जो वसअत है वो क्या है, क्या इमाम सिर्फ सियासी हुकूमत है, सियासी जानशीन है रसूल अकरम का, क्योंकि रसूल अकरम ने अपने बाद उम्मत छोड़ी, दीन छोड़ा और एक हुकूमत छोड़ी है। तो क्या दीन में जानशीनी है उनकी या सियासी जानशीनी है? तो अहले सुन्नत कहते हैं कि जो शख्स जानशीन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सियासी जानशीन होगा, हाकिम होगा वो, इल्मी जानशीन उनका कोई शख्स नहीं होगा। ये अहले सुन्नत की जो है वो राय है। शिया इसके मद्दे मुकाबल कहते हैं कि नहीं, सियासी जानशीन भी होगा, इल्मी जानशीन भी होगा और वसीले फैज भी होगा। इस वक्त जो हमारी बहस है वो यही इल्मी मरकज के तौर पे बहस है कि इल्मी मरकज आखिर, जब अहले सुन्नत कहते हैं कि कोई शख्स उनका इल्मी जानशीन नहीं होगा, फिर आखिर जो है कयामत तक के लिए लोगों के पास ये दीन हासिल करने का जरिया क्या होगा? तो उसके लिए जो अहले सुन्नत का नजरिया है वो आपकी खिदमत में जो है अर्ज करना है, और उसकी दलाइल जो है वो आज बयान करना है, उसका मुख्तसर तज्जिया हम जो है। बिरादरान अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इल्मी जानशीन कोई फर्द नहीं होगा, एक फर्द नहीं, एक शख्स नहीं होगा, बल्कि रसूल अकरम के बाद उनकी जो इल्मी जानशीनी है एक तो कुरान मजीद की सूरत में है जो अल्लाह तबारक व ताला की किताब है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने ली है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये कुरान मजीद कयामत तक के लिए है, जब कयामत तक जारी रहेगा तो एक तो जानशीन इल्मी तौर पे रसूल अकरम का कुरान मजीद, उसके बाद उनकी वफात के बाद सारे सहाबा उनके जानशीन, रसूल अकरम के सारे सहाबा जानशीन और सब आदिल हैं। आदिल इस माना में कि जो कुछ वो कहेंगे वो रसूल अकरम से कहेंगे और उसमें उनकी अदालत जो है वो साबित है, और जो कुछ वो कहेंगे उसमें झूठ नहीं बोलेंगे, गलत बयानी नहीं होगी और सही रसूल अकरम से दीन बयान करेंगे। इसलिए जो अफराद सहाबा के दौर में हों तो वो किसी भी सहाबी से दीन लें, उसके मुताबिक अमल करें कुरान मजीद, और सहाबी से दीन लें अमल करें। हम कहते हैं कि हम सहाबा के दौर में नहीं हैं, तो कहते हैं कि फिर सहाबा के बाद उनके जो इल्मी तौर पे शागिर्द थे जिनको ताबईन कहा गया है, ताबईन में से जो आदिल है, ताबईन सारे आदिल नहीं मानते पहले सुनकर, उनमें से जो आदिल हैं उनसे दीन लें, वो दीन लेते हैं सहाबा से, सहाबा लेते हैं रसूल अकरम से। तो अगर ताबईन के दौर में हम हुए तो ताबई से जो दीन लेंगे वो रसूल अकरम का दीन। हम कहते हैं कि हम ताबईन के दौर में भी नहीं हैं, तो कहते हैं कि उनके जो शागिर्द हैं जिनको इस्तलाह में तबा ताबईन कहा गया है, उनमें से जो आदिल हैं वो भी सारे आदिल नहीं है, सहाबा सारे आदिल हैं, ताबईन और तबा ताबईन सारे आदिल नहीं है। तबा ताबईन में से जो आदिल हैं उनसे हदीस लें, वो हदीस लेंगे ताबईन से, ताबई हदीस लेगा सहाबा से, सहाबी हदीस लेगा रसूल अकरम से, आपको दीन पहुंच जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हम तो तबा ताबईन के दौर में भी नहीं है, तो फरमाते हैं कि उनके बाद हदीस के रावी हैं, जो सुन्नत रसूल को रिवायत करते हैं वो रावी लेते हैं ताबईन से, ताबईन तबा ताबईन से, वो सहाबा से, रसूल अकरम से। तो आप वहां से हदीस लें, सुन्नत लें, कुरान मजीद आपके सामने मौजूद है, इस पे अमल करें तो दीन पे अमल हो। हम कहते हैं कि हम उसके दौर में भी नहीं है मौजूद, तो कहते हैं कि मुहद्दिसीन हैं उनके बाद जिन्होंने अहादीस रसूल और सुन्नत रसूल को जमा किया है, और मुहद्दिसीन के दौर में अगर आप हैं तो मुहद्दिसीन से लें, वो रावी से लेंगे, वो तबा ताबईन से, वो ताबईन से, वो सहाबा से, रसूल अकरम से। हम कहते हैं कि हम उनके दौर में भी मौजूद नहीं है, तो कहते हैं मुहद्दिसीन की किताबें हैं जो उन्होंने तरतीब दी हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी किताबें हैं, कई कई जिल्दों में जो है रसूल अकरम की सुन्नत और हदीस बयान की गई है। तो इस दौर में कुरान मजीद है और अहादीस की किताबें हैं। कुरान मजीद और अहादीस की किताबों से जो कुछ आप लेंगे, ये जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है और ये वही दीन है जो खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है, तो आप इस पे अमल कर सकते हैं। तो ये नजरिया है इल्मी जानशीनी के हवाले से। शिया नजरिया यह है कि इल्मी जानशीनी एक फर्द की है, सबकी नहीं है। हाँ, बाकी जैसे रसूल अकरम के दौर में बाकी सहाबा मुनसलिक थे रसूल अकरम से, मरकज रसूल अकरम थे, सहाबा वाबस्ता थे उनसे। इसी तरह से रसूल अकरम के बाद जो इमाम है वो मरकज होगा और उनके जो साथी होंगे सहाबा होंगे वो उनसे वाबस्ता होंगे, वो एक मरकज जो है। अब ये इल्मी जानशीनी का ये जो है वो नजरिया है, एक शिया नजरिया, एक अहले सुन्नत बिरादरान का नजरिया। तो चूंकि हमने ये अर्ज किया शुरू में कि हम सियासी जानशीनी के हवाले से बात करने वाले नहीं है, इसलिए उस हवाले से कोई बात नहीं करें। हमारी बहस सिर्फ और सिर्फ इल्मी जानशीनी के हवाले से है, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि जी सियासी जानशीनी तो अब बहस जो है ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर आप ये साबित भी कर लें कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को सियासी जानशीन होना चाहिए था, तो अब तो हो गया, अब वो वापस तो नहीं हो सकता, इसलिए ये सियासी जानशीनी की जो बहस है वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, सियासी जानशीनी की बहस अगर इस हवाले से फायदेमंद नहीं है, तो इल्मी जानशीनी की जो बहस है वो तो हर मुसलमान के लिए जरूरी है, क्योंकि हर मुसलमान जो दीन हासिल करना चाहता है वो रसूल अकरम का दीन, क्योंकि दीन का दुनिया में बानी जो है वो नबी होता है, रसूल होता है, और उसके पास जो दीन आता है वो खुदा की तरफ से वही के जरिए से आता है, और वही की जमानत अल्लाह तबारक तआला ने ली है, तो रसूल की जमानत अल्लाह तबारक तआला ने ली है। अब हम तक कैसे पहुंचे ये दीन, ये इल्म जो रसूल अकरम की जो दीनी तालीमात हैं वो हम तक कैसे पहुंचे ताकि हम उस पर अमल करें, इस हवाले से दो नजरियात जो आपकी खिदमत में अर्ज किए। एक शिया नजरिया कि कोई उनका एक इल्मी जानशीन होगा और उसका ऐलान जो है वो रसूल अकरम के जरिए से होगा, चूंकि हम नहीं पहचान सकते, लेकिन इसके मद्दे मुकाबल जो बिरादराने अहले सुन्नत हैं वो कहते हैं कि इल्मी जानशीनी कोई शख्स नहीं होगा, कुरान मजीद है, उसके बाद सहाबा ताबईन तबा ताबईन रावी मुहद्दिसीन और अब हदीस की किताबें और कुरान मजीद, इनसे दीन लें और इस पर जो है अमल। आपने देखा कि हम इस बहस को एक हद तक कोशिश करते हैं कि मुख्तसर भी रखें, तो चूंकि ये जो नजरिया है इल्मी जानशीनी का, इस सब का दारोमदार सहाबा पे है कि सहाबा सब आदिल, जबकि ताबईन के लिए अहले सुन्नत का नजरिया ये नहीं है कि सब आदिल है, नहीं, उनमें कुछ आदिल हैं, जो आदिल हैं हम हदीस उनसे लें, तबा ताबईन में कुछ आदिल है, रावियों में कुछ आदिल है, मुहद्दिसीन में कुछ आदिल है, तो हम आदिल से लेंगे। लेकिन जब सहाबा पे पहुंचते हैं तो कहते हैं कि सहाबा सब आदिल, सहाबी के बारे में हम कोई छान पटक नहीं करेंगे। जैसे रावी के लिए जो है इल्म रिजाल है कि उसमें देखा जाए कि रावी आदिल है कि नहीं है, कहते हैं ये बाकी रावियों के लिए तो है लेकिन सहाबा के लिए नहीं है। तो ये देखते हैं कि सहाबा सब आदिल हैं इस हवाले से, बाकी जो उनकी चीजें हैं तकवा और परहेजगारी के हवाले से वो हमारी बहस नहीं है। इस वक्त जो अदालत जेर बहस है वो बहैसियत रावी हदीस के, सहाबा आदिल हैं। इसका मतलब क्या है? आदिल रावी हैं रसूल अकरम से हदीस बयान करने में। तो अब देखेंगे कि बिरादरान अहले सुन्नत सहाबी किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि आदिल किसको कहा जाता है, और फिर देखेंगे कि इसके लिए दलाइल क्या है हमारे पास, तो उस दलाइल का फिर थोड़ा सा तजिया। देखिए, अदालत साहबा में सबसे पहले जो है वो ये है कि जी सहाबी किसको सहाबी कहा गया है, अहल सुन्नत किसको सहाबी कहते हैं। शायद आपके जहन में ये भी आए कि जी शिया सहाबी किसको कहते हैं, तो शिया सहाबी के हवाले से कोई खसूसी डेफिनेशन नहीं करते, क्योंकि उसके हवाले से कोई खास हुक्म नहीं लगाते कि हर सहाबी आदिल है। इसलिए कहते हैं जो भी आप डेफिनेशन कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है सहाबी की डेफिनेशन, शिया ये कहते हैं। अहले सुन्नत वाले क्या कहते हैं, सहाबी कौन है? कहा कि मन लकिया नबी, जो नबी से मुलाकात करे, लेकिन क्या है, मुमिनन ईमान के साथ हो मुलाकात, फिर यह है कि वो मात अलल इस्लाम, और एक शर्त यह है कि उसकी जो मौत है और वफात है वो भी इस्लाम पे हो। तो इसमें एक एक लफ्ज करके देखें क्या कहा गया है। सबसे कहा लकिया नबी, मुलाकात हो नबी से, मुलाकात कहा, इसमें देखना नहीं कहा कि रसूल अकरम को देखा हो, नहीं, मुलाकात की हो। क्यों? उसका सबब यह है कि वो कहते हैं कि चूंकि कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो नाबीना थे, तो नाबीना तो देख नहीं सकता, लेकिन उनकी रसूल अकरम से मुलाकात हुई है, जब मुलाकात हुई है तो सहाबी हैं, तो देखना शर्त नहीं है, मुलाकात शर्त। दूसरा यह है कि अन्नबी, ये नहीं कहा मोहम्मद बल्कि कहा अन्नबी। अन्नबी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि बेसब के से बात मुलाकात, रसूल अकरम ने जब ऐलान रिसालत किया है उसके बाद मुलाकात हुई, उससे पहले अगर मुलाकात हुई तो वो सहाबी नहीं होगा। सहाबी वो होगा जब रसूल अकरम ने ऐलान किया रिसालत का, तो इस ऐलान के बाद जो उसके साथ मुलाकात करेगा, तो इसलिए नबी कहा। फिर कहा कि मोमिनन बा ईमान, यानी उसकी मुलाकात इस हालत में हो कि वो मुसलमान हो चुका हो, काफिर की हालत में मुलाकात न हो। अगर एक काफिर रसूल अकरम से मुलाकात करे तो वो सहाबी नहीं होगा, सहाबी वो होगा जो ईमान लाए और ईमान के साथ मुलाकात। तो पहली शर्त ये हुई कि बेसत के बाद ईमान, नंबर दो मुलाकात, और नंबर तीन ये है कि ईमान पर वफा। ये तीन शरायत जिसमें भी होंगे वो अहले सुन्नत की नज़र में रसूल अकरम का सहाबी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे दूर से मुलाकात हुई हो, चाहे और ज्यादा उनके साथ रहा हो, बच्चा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरायत ये जो है तीन है। अब जब ये सहाबी हुआ, आदिल का क्या मतलब, अदालत क्या है? अदालत के लिए वो जो अदालत हम बयान करना चाह रहे हैं वो अदालत है बहैसियत रावी के। तो रावी की अदालत जब कहते हैं कि ये रावी आदिल है, इसका क्या मतलब है? तीन इसके शरायत है, एक ये कि इस्लाम हो, मुसलमान हो, नंबर दो उसके अंदर सदाकत हो, झूठा ना हो, सच बोलने वाला हो, सदाकत उसके पास हो ताकि उस पर एतमाद किया जा सके। तो दूसरी शर्त है सदाकत। तीसरी शर्त हाफिजा है कि उसको भूलने की बीमारी ना हो, कि भूल जाता हो चीजें, कुछ चीजें भूल गया, कुछ चीजें याद रहीं, नाम भूल गया, ये भूल गया, नहीं, भूलना ना हो उसकी जो है वो ये खसूसियत। आदिल रावी वो है कि जो मुसलमान हो, सदाकत हो उसके पास, और हाफिजा उसका हो, जिसको ये जो है वो जब्त कहते, तो जब्त के हवाले से जो है ये हाफिजा हमने उसको जो है तर्जमा किया है, जबकि ये इल्मी इस्तलाह जो है जब्त है, जाबित हो। यानी हाफिजा उसका कवी। अब ये तीन सूरतें जो है वो हो गई, तीन शराइत। अब आते हैं, देखते हैं कि जी आपने कहा कि सब सहाबा आदिल हैं, जितने रसूल अकरम सहाबा हैं वो आदिल हैं। सहाबी की हमने डेफिनेशन की, अदालत की। अब हम सवाल करते हैं कि इसके लिए दलील क्या है आपके पास? तो कहते हैं जी हमारे पास दो दलाल, एक तो कुरान मजीद की आयात दलायल है, एक कुछ अहादीस हमारे पास रसूल अकरम की दलील है कि हर सहाबी आदिल है। क्या कुरान मजीद की आयात सहाबी की अदालत साबित कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। अगर कुरान मजीद कहे कि रसूल अकरम के जितने साथी सहाबी हैं सब आदिल हैं, सब सहाबी आदिल हो जाएंगे, कुरान मजीद में ये सलाहियत है। क्या अहादीस साबित कर सकती हैं कि सहाबी आदिल है? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका सबब यह है कि जो भी हदीस आप लेंगे उसमें रसूल अकरम से पहला रावी खुद सहाबी है, तो सहाबी की अदालत पहले साबित हो तो वो हदीस साबित होगी। अभी तो हम सहाबी की अदालत बहस कर रहे हैं, जो भी हदीस हम बयान करेंगे उसमें सहाबी तो आएगा, जब सहाबी आएगा अभी तो सहाबी की अदालत साबित नहीं हुई, तो उस हदीस के जरिए से सहाबी की अदालत साबित नहीं होगी क्योंकि अभी हम इस बहस में, इसलिए वो अहादीस हम पेश नहीं करते। हम सिर्फ पेश करते हैं वो आयात जो बिरादरान अहले सुन्नत इस हवाले से पेश करते हैं, और देखते हैं कि फिर वो आयात सहाबी की अदालत साबित करती हैं कि नहीं करती, या किसी कोई कुछ और बयान कर। मैं यहाँ पे आठ आयात जो है वो जमा किए हैं मैंने। इनमें से पहली जो छह आयात हैं वो इमाम ज़हबी, जो अहले सुन्नत के बहुत बड़ी शख्सियत है इस हदीस के उलूम में और इल्म रिजाल में, उसकी एक रिसाला है जो इसी उनवान से है, अदालत साहब, मफहूम अदालत साहब। उसमें उसने छह अहादीस आयात बयान, पहले वो छह आयात आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, फिर दो आयात और मजीद जो उमूमन बयान होती हैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, ताकि देखें कि क्या ये कुरान मजीद की आयात ये बयान करती हैं कि सहाबी आदिल हैं। ये दो आयात ऐसी हैं कि जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने एक जगह जमा करके फिर इस पे जो है बात। पहली आयत जो है सूरह बकरा में, और वो आयत जो है कहती है वो कदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने आपको बनाया है उम्मत वसत, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि आप बने इंसानों पर गवाह, व यकून रसूलो अलैकुम शहीदा, और रसूल बने आप पर गवाह। कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो लफ्ज वसत है, वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने आपको उम्मत वसत बनाया है, तो यहाँ पे वसत से मुराद उम्मत आदिल, तो यहाँ पे आदिल कहा गया, इसलिए सहाबा आदिल। दूसरी आयत आले इमरान की है, कुंतुम खैर उम्मतिन, आप बेहतरीन उम्मत हैं, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए उठाए गए हैं, तामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते हैं, तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं, और तुमनून बिल्ला, और खुदा पर ईमान रखते हैं। तो कहते हैं बेहतरीन उम्मत, तो ये भी एक तारीफ है और ये अदालत के हवाले से। अब इनमें सिर्फ एक इब्तदाई जो है बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो ये है कि उम्मत, यह यहाँ पे कहा गया दोनों आयतों में उम्मत, आप उम्मत को हमने वसत बनाया, आप उम्मत को हमने खैर बनाया। तो आप उम्मत से मुराद खास तौर पे सहाबा हूं, इसके लिए कोई कुरानी दलील नहीं है कि यहाँ पे मुराद उम्मत से सहाबा हूं। अहादीस की तरफ जाएंगे तो अभी हम सहाबी की जो है वो अदालत साबित कर रहे हैं, इसलिए किसी हदीस की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम तो कुरान मजीद से अभी बहस कर रहे हैं। उम्मत से मुराद खास सहाबा हूँ, ये कुरान मजीद की कोई ऐसी हिदायत नहीं है कि हम कुरान मजीद के जरिए से उम्मत, यहाँ पे जो लफ्ज कहा गया आप उम्मत को हमने जो है वसत बनाया है, कि आप उम्मत से मुराद सहाबी हो ये कोई दलील नहीं। या तो ये वसी है कि पूरी उम्मत मुहम्मद मुराद है जो कयामत तक आने वाली है, फिर अगर इससे मुराद वसत से मुराद आदिल है तो फिर तो सारी उम्मत आदिल हो जाएगी, कयामत तक इंसान जो उम्मत मुहम्मद में आएंगे चाहे कैसे भी फासिक व फाजिर क्यों ना हो वो भी आदिल है, और ये किसी का नजरिया नहीं है। इसलिए ये जो लफ्ज है उम्मत, ये सहाबा के लिए मखसूस करना ये कोई दलील नहीं है इसके लिए, ये लफ्ज जो है आम है इसलिए मखसूस नहीं कर सकते हम, इसलिए इससे मुराद जो है वो सहाबी लेना इसके लिए कोई दलील नहीं। ये तीसरी और चौथी आयत है, ये तीसरी जो आयत है सूरह अनफाल की आयत है, वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, के वो लोग के जो ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद की, यहाँ पे उन लोगों की तीन सिफतें बयान की गई, ईमान, हिजरत, जिहाद, और फिर कहा गया वल्लदीना आउ व नसरू और आवो व नसरू, और जिन लोगों ने उनको पनाह दी और नुसरत, ये अंसार की तरफ जो है इशारा है। उलाए कहुमुल मोमिनून हक का, ये मोमिनीन हक है, वाकई मोमिनीन है, सच्चे मोमिनीन है। लहुम मगफिरतुन व अज्र रिज़्कुन करीम, उनके लिए मगफिरत है और बड़ी इज्जत वाली रोजी है उनकी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस आयत में एक दफा तर्जमा फिर सुन लें, वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की, जिहाद किया खुदा की राह, वल्लदीना आवो व नसरू, और वो लोग जिन्होंने इनको पनाह दी और नुसरत की, ये सच्चे मोमिनीन हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादातर आप अल्फाज देखेंगे तो ये अंसार और मुहाजरीन के, जबकि सहाबियत का दामन जो है वसी, सहाबी तो वो भी हैं जो ना मुहाजिर हैं ना अंसार हैं, मुहाजरीन में से भी वो कहे गए हैं जो जिन्होंने जिहाद किया है, कुछ ऐसे मुहाजरीन भी होंगे जो जिहाद नहीं किया, तो अब सबके लिए नहीं, ये मखसूस जो है ग्रुप है। अगर आप मुहाजरीन जो तादाद तारीख में देखें तो चंद सौ मुहाजरीन जो है वो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, अगर आप अंसार की तादाद देखें तो भी 5-10 हज़ार से ज्यादा नहीं है, जबकि रसूल अकरम के सहाबे की तादाद जो बरादरान अहले सुन्नत बयान करते हैं वो तो 1 लाख से ज्यादा है। तो ये आयत सिर्फ मुहाजरीन और अंसार के लिए, ये सब सहाबा के लिए नहीं है, इसलिए जो दावा है वो यहाँ पे साबित नहीं है। चौथी आयत, ये सूरह तौबा की जो है वो आयत है, कहा गया कि वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजरीन वल अंसार, ये मुहाजरीन और अंसार में से जो सबकत करने वाले हैं और सबकत करने वालों में भी जो अव्वलीन है या कायदीन है, सबसे आगे आगे है वो, वल्लदीन तबउहुम बे एहसान, और दूसरे वो लोग के जिन्होंने नेकी में उनकी इत्तबा की है, नेकी में उनके पीछे चले हैं, رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور وعد لہم جنات، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات جو ہے وہ مہیا کر رکھی ہیں، تجری تحت الانہار، جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذلک فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو پہلا گروہ ہے سابقین الاولین، مہاجرین اور انصار میں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انصار اور سارے مہاجرین بھی نہیں، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے بھی سارے نہیں، ان میں جو اولین ہیں یعنی جو قائدین ہیں، ایک تو وہ، دوسرا جو لوگ نیکی میں ان کی اتباع کریں گے. اب نیکی میں اتباع کس نے کی ہے یہ قرآن مجید تو بیان نہیں کرتا، یہ تو پھر تاریخ اور حدیث کی طرف جو ہے جانا پڑے گا، تو وہ بھی محدود ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ جو ان اولون کی یا اولین کی جو ہے اتباع نیکی میں کریں گے ان کے لیے ہے یہ، تو یہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے، سب صحابہ اس میں شامل نہیں ہوں. قرآن مجید کی آیات آپ جتنی بھی اس میں شامل کر لیں وہ سارے صحابہ اس سے جو ہے وہ مراد نہیں لیے جا سکتے، یہ محدود پھر تعداد ہو گئی. جبکہ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے وہ عدالت صحابہ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. پانچویں آیت یہ سورہ فتح کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ جو ہے راضی ہوا مؤمنین سے، اذ یبایعونک، جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرت، اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینت علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر تسکین نازل کی، واصابہم فتحا قریبا، اور قریبی فتح جو ہے. یہ آیت جو نزول ہوا ہے وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان افراد کے لیے کہ جو بیعت کر رہے ہیں رسول اکرم کی، شجر کے نیچے، یہ صلح حدیبیہ کا جو ہے معاملہ ہے. صلح حدیبیہ میں رسول اکرم کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ 1400 سے 1600 کہے گئے ہیں، نہ سارے مہاجرین تھے نہ سارے انصار تھے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے 1400 یا 1600 افراد جو ہے شامل تھے. اب اس کے ذریعے سے کیسے پورے صحابہ پہ کوئی حکم آپ فٹ کریں گے، یہ تو مخصوص 1400 افراد کے لیے کوئی حکم دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ محدود ہے آیت، جبکہ دعویٰ جو ہے وہ تمام صحابہ کے لیے. یہ پانچویں ہے. چھٹی آیت یہ بھی سورہ فتح کی ہے، آخری آیت ہے سورہ فتح کی 29، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافرین پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں نہایت نرم اور رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے کہ زیادہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ سے فضل جو ہے تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ، اور اس کی رضا کی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، سجدوں کے اثرات آپ ان کے چہروں پہ جو ہے نمایاں پائیں گے، ذلک مثلہم فی الانجیل، فی التورات، یہ تورات میں ان کی مثال جو ہے اس طرح، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال ہے، کزر ان، ایک کومپل جو ہے وہ نکلتی ہے جیسے زمین سے، اخرج شطاہ، اس نے اپنا سر نکالا، فازرہ، فاستغلظ علی سوقی، پھر وہ مضبوط ہوئی اور جڑ اس کی مضبوط ہوئی اور جو ہے اپنے اس جو ہے جڑ کے تنے کے جو ہے آسرے پہ کھڑی ہو گئی، یوجب الزرع، کہ جو اس کا زراعت کرنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو بھی وہ جو ہے خوش کر رہی ہے، اور لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیتی کے ذریعے سے کافروں کو جو ہے غصہ دلائے. پھر کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جو मोमिन हैं और साहिबे अमले साले हैं उनके लिए क्या है, मगफरतन व अजरन अदीमा, उनके लिए मगफरत अजीम है। यहाँ पे भी मिन होम लफ्ज जो है वो तबीज है, बाज है, पूरे नहीं है, सब नहीं है, ये रसूल अकरम के जो भी साथी हैं वो सारे नहीं। कहा गया कि उनमें से वादा, अल्लाह का वादा उनसे है कि जो साहिब ईमान है, हकीकी है उनका ईमान और अमल भी उनका साले है, जो भी उसके शरायत है हकीकी ईमान और अमल साले के, जिनका भी अमल साले है और ईमान सही है, उनसे अल्लाह की जो है अल्लाह का वादा है। तो मिन हम यहाँ पे बाज है, तो ये भी सारे सहाबा के लिए न हुआ। अब ये दो छह वो आयात थी जो इमाम ज़हबी ने पेश की। अब दो मजीद आयात जो है वो मुख्तलिफ जो हम सुनते रहते हैं बरादरान अहले सुन्नत के उलमा को, तो मजीद दो आयात भी वो पेश करते हैं, वो भी आप खिदमत में जो है देते हैं ताकि उसको भी देख लें, फिर मजमूई तौर पे उनका जो इनका जो है तजिया कर। ये आयत जो है सूरह हशर की है, कहा गया कि वल्लदीना जाऊ मिन बादेन, के जो इनके बाद आएंगे या जो इनके बाद आए, या कुलूना वो कहते हैं, वो ये दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? रब्बना इग़फिर लना, पालने वाले हमारी मग़फ़रत फरमा, वले इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, के उनकी भी मग़फ़रत फरमा जो ईमान में हमसे सबक़त ले गए हैं, वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन, और हमारे दिलों में कोई खोट पैदा न कर, लिल्लज़ीना आमन, उनके लिए जो ईमान लाए, रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, रब तू जो है रऊफ और रहीम। तो ये भी उनके लिए कहा गया कि जो पहले से मदीने में मौजूद हैं और जो बाद में मदीने में आए, वल्लदीन जाऊ जो बाद में मदीने में आए, मिन बाद इन मुहाजरीन के आने के बाद मदीने में आए, वो ये कहते हैं। तो यहाँ पे जो बहस है वो भी मदीने वालों के लिए है, जो मदीने में पहले से मौजूद हैं या जो बाद में मदीने में आए हैं हिजरत करके, चाहे मक्का से हिजरत करके आए चाहे दूसरी जगह से आए, उनके बारे में है। ये भी पूरे सब जो है वो रसूल अकरम से मुलाकात करने वालों के लिए नहीं है, ये भी महदूद है, जबकि दावा जो है वो सब जो है वो सहाबा के लिए। आठवीं आयत, ला यस्तविल काएदून, के जो घर में बैठे हुए हैं वो बराबर नहीं है, मिनल मोमिनीन उन मोमिनीन के, गैर उल जरर सवाए उनके जो कोई माजूर हैं, वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, जो जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में, बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से अपने जान से, माल और जान से जिहाद करने वाले मोमिनीन, इनके बराबर वो नहीं है जो घर में बैठे हैं, वो भी मोमिनीन हैं, नेकी करते हैं, और चूंकि जिहाद पे जो मोमिनीन गए हैं वो काफी हैं, इसलिए वो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका दर्जा जो है वो इनके बराबर नहीं है कि जो जान और माल से जिहाद भी करते हैं, मोमिन भी हैं और माल और जान से जिहाद भी करते हैं। फजलल्लाहुल मुजाहिदीना बे अमवालहिम व अनफुसहिम, अनफुसहिम के जो मुजाहिदीन अपने अमवाल और अनफुस से जिहाद करते हैं उनको अल्लाह तबारक तआला ने फजीलत दी है, इनके ऊपर अलल कायदीन के जो घर में बैठे हैं, दरजतन एक दर्जा, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने नेकी का वादा सबसे किया है, चाहे वो घर में बैठा हुआ हो नेकी कर रहा हो उससे भी नेकी का वादा है, या मुजाहिद है उससे भी नेकी का वादा, नेकी का सबके साथ है, कुल्लन वकुल्लन वअदल्लाहु, इन सब से अल्लाह ने वादा किया हुआ है नेकी का। फजल अल्लाहुल मुजाहिदीन अल काइदीन अजरन अदीमा, लेकिन मुजाहिदीन को जो है घर बैठने वालों पे फजीलत दी है अल्लाह तबारक ताला ने, अजर अजीम। ये आयत जो है अगर आप देखें तो ये आयत रसूल अकरम के दौर को बयान नहीं कर रही है, तो हर दौर के लिए, आज के दौर के लिए भी है कि एक वो मुजाहिदीन हैं कि जो जान और माल से जिहाद कर रहे हैं, एक वो मोमिनीन हैं जो घर पे बैठे हुए हैं। घर पे बैठे हुए मोमिनीन जो नेकी अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी उस नेकी का अजर देगा, लेकिन जो मुजाहिदीन हैं उनको फजीलत हासिल है उनके ऊपर जो घर बैठे हुए। तो इसमें रसूल अकरम के दौर का कोई जिक्र नहीं है, ना आगे ना पीछे। आप आयात पूरी उठा के देख ले तो आपको नजर आएगा कि कहीं पे भी रसूल अकरम के दौर का जिक्र नहीं है। ये तो हर दौर के मुजाहिदीन और घर में बैठने वाले अफराद की बहस हो रही है कि जो घर में बैठने वाले हैं उनके ऊपर फजीलत है उनको, जो मुजाहिदीन हैं लेकिन नेकी का वादा सबसे है, इसलिए कि घर में बैठे हुए भी नेकी करते हैं और ये जो मुजाहिदीन है ये भी नेकी करते हैं, तो सबसे अल्लाह का वादा। सबसे कुल्लन यहाँ पे जो लफ्ज है वो रसूल अकरम के सहाबा के लिए नहीं है, ये सारी उम्मत कयामत तक जो आएगी उसमें जो घर में बैठने वाले हैं और जो जिहाद करने वाले हैं, दोनों से अल्लाह ने नेकी का जो है वादा किया। तो जो पहली दो आयतें थी जिसमें उम्मत लफ्ज था वो सहाबा से वसी है, उम्मत सहाबा से वसी है, तो अगर वो आयात अदालत साबित करती हैं फिर तो पूरी उम्मत की अदालत साबित, और जिसका कोई नजरिया नहीं है। और उन उम्मत में से, उम्मत लफ्ज से सिर्फ सहाबा मुराद लेना इसके लिए कोई दलील हो। उसके बाद जो 6 आयतें थी वो खुद महदूद थी, पहली जो आयतें थी वो महदूद थी, आखिरी आयत जो है वो वसी है पूरी उम्मत की। कहीं पे महदूद है कहीं पे वसी है। सहाबा जो एक डेफिनेशन बयान की, उनके लिए कोई ऐसी आयत नहीं है कि जो बयान करे कि सहाबा आदल हैं कि नहीं है, ऐसी कोई आयत ही नहीं है तो जो सब सहाबा को किसी एक उनवान से बयान कर रही है। कुरान मजीद में ऐसा कोई, रसूल अकरम के साथियों के लिए ऐसा कोई इस्तलाह इस्तेमाल नहीं हुई जो खास रसूल अकरम के उन सहाबा के लिए जिनके लिए वो 3 शरायत बयान की कि रसूल अकरम के बेसब के बाद इस्लाम लाया हो, रसूल अकरम से मुलाकात की हो और इस्लाम पे उसकी वफात हुई हो। ये जो सहाबा हैं इसके लिए कुरान मजीद ने कोई लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, कोई इस्तलाह इस्तेमाल ही नहीं की। या तो उससे वसी इस्तलाह है जैसे उम्मत, या इस आखिरी में के घर में बैठने वाले और जिहाद करने, या महदूद है कि जो मुहाजरीन और अंसार उनमें जो है वो अव्वलीन और साबितीन और इस तरह आपने देखा, या महदूद हैं या वसी हैं। सहाबा के लिए कोई ऐसी आयत नहीं है, लेकिन इस सब को भी कबूल करने के बाद हम नीचे आके तनज्जुल करके कहते हैं ठीक है जी, ये जो आयतें हैं हमने कबूल कर लिया कि ये सहाबा के, लेकिन इससे अदालत कहाँ साबित। और अदालत वो जो रावी की अदालत है, रावी की अदालत क्या है, एक इस्लाम, एक सदाकत, एक हाफजा। जहां पे भी आकर आप रावी की बहस देखेंगे इल्मे रिजाल में तो वहां पे ये 3 शरायत जो है वो बुनियादी शरायत है, मुसलमान हो उसके साथ सदाकत हो, उसके साथ झूठा ना हो, और दूसरा तीसरी ये है कि हाफजा उसका कवी हो, मजबूत हो, वो भूलने का मरीज ना हो। अब इन आयात में इस्लाम तो तذکرہ हुआ है, इस्लाम और ईमान, लेकिन कहीं पे सदाकत की कोई बहस नहीं, कहीं पे हाफजे की कोई बहस नहीं, न सदाकत को जो है जेरे बहस लाया गया है, ना हाफजे को जेरे बहस लाया गया है। क्या इन इन आयात में से किसी आयात में था कि ये जितने लोग हैं वो सारे हाफिज़े के कवि होंगे और ये जितने बयान करेंगे इनमें वहम कोई नहीं होगा, ख्याल कोई नहीं होगा, सब वो होगा जो रसूल अकरम से सुना हो और जो अल्फाज रसूल अकरम ने कहा वही बयान करेंगे, इनका हाफिज़ा कवि है मजबूत है, कोई ऐसी आयत नहीं थी, न कुरान मजीद में ऐसी कोई आयत है। इसी तरह से सदाकत के हवाले से भी कोई बहस नहीं थी इसमें। तो इन सब आयात को, पहला को हमारा जो तज्जिया है वो ये है कि ये सहाबा के लिए नहीं है, या तो सहाबियत के दामन से वसी हैं पूरी उम्मत के, या सहाबा के दामन से वो जो है छोटी हैं जैसे मुहाजिरीन व अंसार हो उनमें भी। जो नंबर दो जो है वो ये है, इसमें कहीं पर जो है वो अदालत बयान नहीं हुई, न सदाकत का कोई बयान है, न हाफिजे का कोई बयान है। तो कैसे हम इन जो है वो आयात से नतीजा निकालें कि सब सहाबा आदिल हैं। ये वो आयात थी जो बयान की जाती हैं, पेश की जाती हैं इस हवाले से, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, और इनका एक मुख्तसर तज्जिया जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज। अब देखें, जब यहाँ तक हम पहुंचे तो अब जो है वो कुछ आखिरी चंद बातें जो है करते हैं, उसके बाद आपके सवालात जो है वो लेंगे। जब सब सहाबा आदिल न हुए तो अब जो है वो बहस ही टूट गई कि सहाबा से जो आप दीन लेंगे वो सही दीन होगा, और फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, और फिर नीचे और किताबें और सारी चीजें। ये क्योंकि पहला पहला जो इस जंजीर का रुकन है, कड़ी है, वो अदालत सहाबा थी, और अदालत सहाबा कहीं पर जो है वो कुरान मजीद से साबित नहीं हुई, अहादीस से साबित हो नहीं सकती, इसलिए कि हदीस में जो भी रसूल अकरम से पहला रावी होगा वो सहाबी है। अभी तो हम सहाबी की अदालत को साबित करने के मैदान में हैं, उसकी अदालत साबित हो तो वो हदीस भी साबित होगी, अगर वो अदालत साबित नहीं है तो हदीस भी साबित नहीं है, इसलिए किसी हदीस से सहाबी की अदालत साबित नहीं होती, और कुरान मजीद ये बयान नहीं करता। अब जरा नताइज इसके हवाले से आप खिदमत में जो अर्ज करने हैं वो ये कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी रिवायतें हैं, और सहाबी से भी रिवायतें हैं, सहाबा से बहुत ज्यादा हमारे पास रिवायतें हैं। हम ऐसा नहीं कि ये नहीं मानते कि सहाबा में आदिल नहीं है, सहाबा में आदिल हैं, और बड़ी लिस्ट है हमारी, हमारे पास उनके जो सहाबा आदिल थे, हम उनकी अहादीस को कबूल करते हैं। बिन जुमला आदिल हैं, बिल जुमला आदिल नहीं है, ये बिल जुमला अहले सुन्नत का नजरिया है कि सब आदिल, जो भी मुलाकात करेगा और वफात इस्लाम पे होगी वो आदिल है, ये अहले सुन्नत का ना। हम मिन जुमला कहते हैं कि जो सहाबी, ये जो आपने डेफिनेशन की, इनमें कुछ हैं जो आदिल हैं। फिर हम कैसे मालूम करते हैं? हमारा जो है बहस वही है जो बाकी रावियों के हवाले से, इल्मे रिजाल है, तारीख है, तारीख में जाके हम जैसे बाकी रावी की तारीख देखते हैं, उसकी किरदार देखते हैं, अगर उसके पास इस्लाम हो, अगर उसके पास जो है वो सदाकत हो, अगर उसके पास जो है हाफिजा हो, तो हम उसको जो है रावी कबूल करते हैं, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो ताबई हो, चाहे वो तबा ताबई हो, चाहे वो बाद में रावी हो, चाहे वो मुहद्दिस हो, हम सबको एक ही उस मयार पे परखते हैं। वो परख क्या है? परख वही शरायत है, क्या मुसलमान था, क्या तारीख में वो बयान है कि वो सच्चा था या झूठा था, या हाफिजा उसका कवी था या कमजोर था, इसको परख के हम रिवायत को जो है उसकी सनद को सही या ज़ईफ जो है सनद करार देते हैं। अहले सुन्नत बरादरान का मसला ये है कि वो नीचे से तो ये तहकीक करते हैं, लेकिन जब सहाबी पे आते हैं तो कहते हैं सहाबी पे कोई तहकीक नहीं, सहाबी के बारे में अदालत की तहकीक करना भी बेदीनी है। सहाबा रसूल अकरम के शागिर्द हैं और ये रसूल अकरम पे एतराज है, और रसूल अकरम पे एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें जो है वो है। हमारा सीधा सीधा है कि जैसे हम ताबई की अदालत जो है वो तारीख में जाके और उसकी ढूंढते हैं, अगर किसी की अदालत मिल जाती है तो हम उसकी रिवायत कबूल कर लेते हैं, इसी तरह से सहाबी को भी हम तारीख में जाके, इल्मे रिजाल में जाके उनकी अदालत ढूंढते हैं, जिनकी अदालत साबित हो जाती है हम उनसे रिवायत लेते हैं। लेकिन इसमें एक मसला जो है वो बाकी है, वो ये है कि अगर इन सहाबियों में इख्तलाफ हो जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए कि सहाबियों में बहुत सारा इख्तलाफ, बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ, इस वक्त जो उम्मत में इख्तलाफात मौजूद हैं, अगर आप इसको वापस देखना चाहेंगे तो आपको नजर आएगा ये सारे इख्तलाफात वो हैं जो सहाबा के दौर में हुए हैं और फिर आज तक जो है जारी हैं। शायद ही कोई इख्तलाफ ऐसा हो जो बाद में पैदा हुआ हो सहाबा के दौर में ना हो। तो सहाबी अगर इख्तलाफ करें तो फिर क्या, फिर हमारे पास जो मायार है वो ये कि रसूल अकरम ने अपना एक इल्मी जानशीन छोड़ा है। हर दौर में एक इल्मी जानशीन होगा उनका, जो जिसको हम इमाम कहते हैं वो इल्मी इमाम है। अगर दो सहाबा आपस में इख्तलाफ करते हैं किसी चीज में रसूल अकरम से मंसूब करने में, तो हम उसमें उसकी तरफ रुजू करेंगे जो रसूल अकरम का जानशीन। आसान अल्फाज में कहें कि रसूल अकरम की वफात के बाद अगर सहाबा का आपस में इख्तलाफ हो तो हम उस तरफ जाएंगे जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का है, चूंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम ने अपना जानशीन करार दिया है, इल्मी जानशीन। अमीरुल मोमिनीन के बाद, उनकी शहादत के बाद अब इख्तलाफ और ज्यादा होगा, क्योंकि अब सिर्फ रसूल अकरम से मंसूब करने में इख्तलाफ नहीं होगा, अब तो हजरत अली से मंसूब करने में भी इख्तलाफ होगा। तो हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ इमाम हसन होंगे, इसी तरह से इमाम हुसैन के दौर में, इसी तरह से आज के दौर में इमाम जमाना अलैहिस्सलाम। तो हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास हम ये अकीदा रखते हैं कि रसूल अकरम ने एक इल्मी मरकज छोड़ा है, जो वो इमाम है पूरा दिन जो है सही सूरत में वहां पे महफूज है, वहां से लेने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि रसूल अकरम से कोई भी हदीस हम जो है अहले बैत को छोड़ के, आइम्मा अहले बैत को छोड़ के बाकी सहाबा से नहीं लेते, लेते हैं, लेकिन उस सहाबी से लेते हैं जिसकी तारीख में अदालत साबित हुई, हम उससे लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर फिर दो सहाबी आपस में इख्तलाफ करें कोई चीज रसूल अकरम से मंसूब करने में, तो हम फिर वापस जाते हैं और वापस जाके उस इल्मी मरकज से रुजू करते हैं कि जो रसूल अकरम ने छोड़ा है, ताकि उस इख्तलाफ में हम उस तरफ को लें जो वो इल्मी मरकज जो है बयान। ये हो गया एक जो है जिसको कहे के शिया नजरिया, जो कि इसके नतीजे में आपस में वजूद में आता है। फिर कल इंशाल्लाह मजीद जो है तफसील के साथ बयान करेंगे, लेकिन एक चीज जो बयान करने की यहाँ पे अभी है जरूरत, वो ये है कि आखिर रसूल अकरम के सब सहाबा को बिरादरान अहले सुन्नत आदिल कहने या उसको साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों वो कहते हैं कि सब सहाबी आदिल? उसके लिए वो कहते हैं कि चूंकि रसूल अकरम से दीन बयान करने वाले सारे सहाबी हैं, गैर सहाबी तो नहीं होगा, क्योंकि गैर सहाबी की रसूल अकरम से मुलाकात ही नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई तो रसूल अकरम से कैसे बयान करेगा? तो बयान तो करेगा सहाबी। तो अगर आप सहाबी को आदिल नहीं कबूल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप दीन जो बयान करने वाले हैं उनको जो है उन पे तनकीद कर रहे हैं, और ये तो फिर दीन आप तक कैसे पहुंचेगा? तो हम कहते हैं कि उसी तरह से पहुंचेगा जैसे आप रसूल अकरम के सहाबा के, जो सहाबा हैं जिनको ताबईन कहते हैं, सबको आप आदिल नहीं कहते। ताबईन, तबा ताबईन, रावी, सबको आदिल नहीं कहते। अगर तो रिवायत करने वालों को सबको आदिल कहना लाजमी है तो ताबईन को भी सबको आदिल कहना पड़ेगा, तबा ताबईन को भी आदिल कहना पड़ेगा, फिर जो भी रिवायत करता है रसूल अकरम को उसको आदिल कहना पड़ेगा। क्यों? वहां पे तो आप तहकीक करते हैं, तहकीक करने के बाद आप रावी को परखते हैं, तहकीक करने के बाद आप जो है ताबई को कबूल करते हैं, तहकीक करने के बाद आप जो है वो तब ताबई उसको कबूल करते हैं। यही फार्मूला सहाबा के लिए कौन क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और जो सहाबी आदिल जो है वो साबित हो वहां से दीन ले लें, और जो ताबई आदिल साबित हो उनसे दीन ले लें। तो ये तो रास्ता खुला हुआ है, कोई बंद तो नहीं होता रास्ता। तो इसके लिए कोई फिर आगे मुझे नहीं मालूम कि क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है वो बात आती है, उसके बाद जो है ज्यादा बहस नहीं। तो ये एक बहस थी जो आपकी खिदमत में अर्ज की है। चूंकि इस दौर में हर मुसलमान को दीन पे अमल करना, दीन की तालीमात पहुंचेगी तो अमल करेगा। अब आज के दौर में कैसे पहुंचे, तो उसके लिए एक बिरादरान अहले सुन्नत का नजरिया था जो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि रसूल अकरम के बाद सहाबा के बाद जो है ताबईन, तबा ताबईन, रावी, मुहद्दिसीन, किताब, और अब कुरान मजीद और किताबें, वहां से आप दीन ले लें और अमल करें। हमने कहा कि इस सब का दारोमदार पहले उस जो कड़ी पे है कि सहाबा सब आदिल हैं। क्या सहाबा सब आदिल हैं, उसके लिए हमने जो दलायल पेश किए जाते हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज किए, और नतीजा ये निकला कि ये दलायल साबित नहीं करते सब सहाबा, सब सहाबा। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं मानते कि मिन जुमला उनमें से आदिल हैं, कई आदिल हैं उनमें से। हमारे यहाँ भी रिवायात जो है रसूल अकरम के बहुत से सहाबा से हैं, सलमान से बहुत सारी रिवायतें हैं, अबू जर से, अम्मार से, मिर्दाद से, बहुत सारे सहाबा से रिवायतें हैं। तो ये नतीजा यहाँ तक। इंशाल्लाह कल जो हम बहस करेंगे वो ये बहस करेंगे कि आखिर कुरान मजीद जो हिदायत की किताब है वो रसूल अकरम के बाद हिदायत का क्या निज़ाम पेश करती है, क्या वो हिदायत कोई इस सिलसिले में रहनुमाई मुहैया करती है कि नहीं करती। अगर कुरान मजीद हिदायत के हवाले से रहनुमाई मुहैया नहीं करता तो वो हिदायत की किताब ही नहीं हुई। देखिए हिदायत की किताब है, किताब ही हिदायत के लिए है, और हिदायत का निजाम ही बयान न करे तो कमी है उसमें, कोताही है। क्या कुरान मजीद ने ये सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, रावी, मुहद्दिसीन, किताबें, इसका निज़ाम पेश किया या कोई और निज़ाम कुरान मजीद पेश करता है? इंशाल्लाह ये बहस जो है कल आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। आज की बहस की हद तक जितने अगर कोई आपके पास सवालात हों तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह बाकी बहस जो है कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
जी एस एम एच सैदी
अस्सलाम वालेकुम
सैदी बुलाने जी
मैं आप मुश्तबा जैदी रावलपिंडी पाकिस्तान से।
फरमाइए।
अच्छा आजाद साहब, ये तो बिल्कुल आपने उन आयात का जो तज्जिया किया और जिसमें सिर्फ ईमान नहीं बल्कि इल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात की भी शर्त थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और अहम नुक्ता कि आगाज़ कुरान में अल्लाह जब तीन ग्रोह है इंसान बता रहा है, अल्लज़ीना योमिनून बिलगैब ईमान वालों का जिक्र करके, या इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम का, या व मिनन्ना से मन यकूलु आमन्ना। तीन ग्रोह हैं, ईमान वाले, काफिर और मुनाफिक। तो हम ये किस तरह से कह सकते हैं कि नबी के दौर में ये तीनों कैटेगरीज मौजूद नहीं थी? साहिब ईमान भी थे, काफिर भी थे और मुनाफिक भी थे। इसीलिए आगाज कुरान में जालिकल किताब ला रैब फीह हुदल मुत्तकीन के कहने के बाद उन सब के बारे में और सबसे तफसील से जो जिक्र है, सबसे ज्यादा आयात वो गुरोह मुनाफिकीन पे है।
जी सही फरमा रहे हैं आप। इंशाल्लाह ये हम जो है कल कुरान मजीद जो हिदायत का निज़ाम पेश करता है उसको कल बयान करेंगे। आज सिर्फ हमने ये बयान किया कि बिरादरान अहले सुन्नत क्या बयान करते हैं, वो अपने नज़रिए के लिए दलाइल क्या लाते हैं, और क्या उनके वो दलाइल साबित करते हैं कि नहीं करते। हमारी आज की बहस सिर्फ इस हद तक कि जो आप आयात की तरफ इशारा कर रहे हैं ये कुरान मजीद का निज़ाम है कि जो कल हम इसको तफसील के साथ फिर बयान करेंगे। अगर फिर आपके पास कोई सवाल हो तो फिर कल आप इसके हवाले से करें।
जजाक अल्लाह।
जी हसन मुर्तजा, कोई सवाल है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी आप राइट करना चाहते हैं राइट कर लें। जी
जी कोई सवाल
हस
है? जी
हसन मुर्तजा, आपने सवाल करना है? कोई और सवाल हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अगर हमारा एक मेलबर्न से बात करें, हमारा सवाल ये था कि ये जो सहाबा कह लें या मुनाफिकिन कह लें, यानी अलैहिस्सलाम और लानतुल्ला, तो क्या ये एक खास जमाने से, खास इलाके से ताल्लुक रखते थे, या किसी भी इलाके से और किसी भी जमाने से ताल्लुक रख सकते हैं?
किसका सवाल जो है वाजह नहीं है कि आप किसके मुतालिक
यानी जो सहाबा
जी
हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हैं, तो
क्योंकि
क्या उसी कैलेबर के शख्सियात अभी भी पैदा हो सकती हैं कहीं भी?
क्योंकि हम सहाबी के हवाले से कोई खास हुक्म सहाबी के लिए नहीं रखते जिस तरह अहले सुन्नत रखते हैं। अहले सुन्नत जब उसको सहाबी साबित करते हैं तो फिर जो है वो कहते हैं कि ये सारे आदिल। हमारे यहाँ इस तरह का कोई चूंकि हुक्म नहीं है इसलिए कोई खास डेफिनेशन भी नहीं है। इसलिए अगर अहले सुन्नत वाले जो सहाबी की डेफिनेशन करते हैं हम भी उसको कबूल करते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जिस डेफिनेशन के तहत जो भी लोग आएंगे अब वो सारे आदिल भी होंगे और सबके लिए वो अहकामात हैं कि जो अहले सुन्नत साबित करते हैं वो हमारे यहाँ साबित नहीं है। इसलिए सहाबी की जो भी डेफिनेशन की जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम अहादीस की तरफ रुजू करें क्योंकि कुरान मजीद ने सहाबी की इस्तलाह रसूल अकरम के साथियों के लिए इस्तेमाल नहीं की तो ला महाला हम जाएंगे जो है हदीस की तरफ। हदीस में जो रसूल अकरम ने सहाबी की इस्तलाह इस्तेमाल की है वो तो एक तो मुनाफिक जो है अब्दुल्लाह इब्ने उबई के लिए भी इस्तेमाल की है जब उसने गुस्ताखी की थी एक रसूल अकरम की शान में तो हजरत उमर ने कहा था कि मुझे इजाजत दे दें मैं इसको कत्ल कर। तो रसूल अकरम ने कहा कि फिर लोग कहेंगे कि मोहम्मद जो है अपने सहाबा को कत्ल करें तो यहाँ पे लफ्ज सहाबी ये सही है इनकी रिवायत। तो रसूल अकरम ने लफ्ज सहाबी में तो इसको भी कबूल किया है जो कि मुनाफिकीन का सरदार था। इसी तरह से जो अहादीस हौज है रसूल अकरम ने हौज के हवाले से अहादीस बयान की हैं जो सहीहैन में सही बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद हैं। रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं जब हौज पे होऊंगा कयामत के दिन तो कुछ लोग लाए जाएंगे जो जिनको मैं पहचान लूंगा फिर उन्हें मुझसे हटाया जाएगा तो मैं कहूंगा कि ये तो मेरे सहाबी हैं तो कहेंगे कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाद जो है उन्होंने क्या क्या चीजें ईजाद कर ली। तो रसूल अकरम तो उनके लिए भी लफ्ज सहाबी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी उसी माना में इस्तेमाल करते हैं जो भी रसूल अकरम के साथ हो लेकिन उसके लिए कोई खास हुक्म हम नहीं लगाते कि वो सब आदिल हैं सब जन्नती हैं सब ऐसे हैं सब ऐसे। ये फिर अहले सुन्नत का वो जो है
जी अगर हमारा सवाल अदालत यानी खुदा की अदालत के हवाले से था कि खुद हम लोग कहते हैं कि सलमान फारसी जैसा नहीं बन सकता, कोई कोई मिकदार जैसा नहीं बन सकता, तो ये जुमला जो है यानी ये बता रहा है कि उस तरह की शख्सियत सिर्फ उसी ज़माने से और उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती है,
नहीं
तो
इस
क्या ये
तरह की
खुदा
कोई
के
हमारे यहाँ इस तरह का कोई अकीदा हमारे यहाँ नहीं है ना कोई हदीस है किसी इमाम के हवाले से कि अब जो है सलमान जैसी कोई शख्सियत वजूद में नहीं आ सकती। बल्कि अगर आप अहादीस को देखेंगे जो इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से जो है उनके साथियों के हवाले से आपको मिलेंगी उनके जो सिफात मिलेंगे वो भी ईमान के उसी कामिल दर्जे पे हैं जो सलमान और अबू जर और इनका था। तो ऐसा नहीं है कि अब वो पैदा नहीं हो सकते हमारा ऐसा कोई नजरिया नहीं है। इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो साथी जो करबला में उनके साथ थे जो शहीद हुए, उनकी जो तारीफ की है वो भी एक आला दर्जे की तारीफ है, और उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो सलमान और अबू जर से कमतर दर्जे का हो। तो हमारे यहाँ ऐसे कोई नहीं है कि वैसी शख्सियात वजूद में नहीं आ सकती, वैसी शख्सियात वजूद में आ सकती है, लेकिन इस वक्त जो हम उम्मत जो है जिस जवाल के दौर से गुजर रही है उसमें मसला ये है कि चूंकि जो किरदार वजूद में आता है वो तो अखलाक से वजूद में आता है, वो सिर्फ सोच से वजूद में नहीं आता, यानी अकीदे से वजूद में नहीं आता, अकीदा सोच है एक, और सिर्फ अमल से भी वजूद में नहीं आता, किरदार तो अखलाक से वजूद में आता है, आदतें इंसान की। और चूंकि हमारी अभी उम्मत के अंदर जो है तरबियत का कोई निज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें अखलाकियात के हवाले से फोकस किया गया हो, इसलिए किरदार वजूद में आज के दौर में नहीं आ रहा, जबकि इमाम जमाना के जो दौर है उसमें ये तालीम तरबियत का निज़ाम जो है आला दर्जे पे पहुंच जाएगा, उस दौर में कई सलमान वजूद में आएंगे। ये हमारा इस तरह का कोई अकीदा न कोई हदीस है न कोई कुरान मजीद की ऐसी कोई आयत।
तो अगर ये इमाम जमाना की गैबत में भी इस तरह की शख्सियत पैदा नहीं हो सकती?
बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई मसला नहीं, इसमें कोई जो है वो रुकावट नहीं है, रास्ता रोका नहीं गया, रास्ता खुला हुआ है।
ठीक जी, अगर ये सवाल है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है?
आपने टाइटल में लिखा है कि इमाम ने नाइब नहीं छोड़े, अगर इमाम पर्दे गैबत में रहकर हिदायत कर सकते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कर सकते? जी मैंने ये नहीं कहा कि इमाम ने नाइब नहीं छोड़े, ये मेरी जो है वो कोई इस तरह की बात नहीं है। इंशाल्लाह जब हम कल और परसों इसको बयान करेंगे तो ये बात जो है वाजे हो जाएगी कि इमाम ने अपने बाद हुज्जत को छोड़ा है, वो हुज्जत हमारे लिए जो है वो इमाम की तरफ से हुज्जत है, इमाम खुदा की तरफ से हुज्जत है, तो इमाम हुज्जत छोड़े बगैर गैबत में नहीं गए। तो ये बहस जो है इंशाल्लाह हमारी जो है वो होगी कल परसों, तो उसको फिर वहां पे देख लें तो ज्यादा सही जो है वो सवाल भी होगा और सही जवाब। क्या सलमान फारसी की तरह रसूल अकरम ने किसी सहाबी के बारे में कहा है कि जिस तरह सलमान मिन्ना अहलल बैत है? मिन्ना अहलल बैत जो है वो दूसरों के लिए भी है, कुछ एक हजरत अबू जर के लिए भी एक रवायत मैंने देखी है और एक और के लिए भी मैंने देखी, इसी तरह से फिर आयम्मा ने जो है वो कुछ अपने साथियों के लिए भी मिन्ना कहा है अहले बैत के हवाले से, तो ये सिर्फ सलमान के लिए नहीं है, मशहूर जरूर है सलमान के लिए, हमारे यहाँ मेंबर जो है सिर्फ सलमान के लिए जरूर बयान करता है, लेकिन हमारी रिवायात में जो है रसूल अकरम से अबू जर के लिए भी है, एक और भी सहाबी के लिए अब मुझे जहन में नहीं आ रहा, इसी तरह से आयमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी कुछ को अपने इस तरह अहल बैत अहल अहल जो है वो करार दिया है, तो ये सिर्फ जो है हजरत सलमान के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी।
जी, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये सवाल यहाँ पे चैट में आया है कि
जादकुमुल्लाह
पाकिस्तान,
तौफीकन, ये फिर जरा दिखाइएगा।
सवाल ये है कि पाकिस्तान में इमामत का निज़ाम कैसे लाया जाए?
जी ये तो बहुत दूर की अभी बात है, चूंकि अभी हमने शऊर जो है बुलंद करना, जो हम पाकिस्तान में रहने वाले मकतब अहले बैत के लोग अपने आप को कहलाते हैं कि हम इस मकतब को मानने वाले हैं, वो खुद ही अभी इस निज़ाम से वाकिफ नहीं है, और इस निज़ाम की तफसीलात तो एक तरफ उनकी बुनियादी उसूलों से ही वाकफियत नहीं है। पिछले दिनों हमने एक जो है विलायत और हुकूमत में जो फर्क है वो एक सिर्फ इस हवाले से बयान किया था। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल नई थी। तो अभी तो हम इस मरहले में गुजर रहे हैं। पहले, सबसे पहले हमने जो काम करना है पाकिस्तान में, वो अपनी इल्मी तहरीक को मजबूत करना। ये इल्मी तहरीक दीनी इल्मी हो या यूनिवर्सिटी की इल्मी हो, इस इल्मी तहरीक को मजबूत करना। दीनी इल्मी तहरीक जो इस वक्त पाकिस्तान में है, उसके साथ हमारे मुआशरे का जो रवैया है वो मुनासिब रवैया नहीं है, इसलिए उससे वो नतायज नहीं मिले। एक मुआशरे का जो रवैया इस के साथ मुनासिब नहीं है वो ये है कि अपने बच्चों में से हम इस इल्मी तहरीक में उसको उमूमन भेजते हैं आमतौर पे, कि जो ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना इधर जा सके, ना उधर जा सके, फिर कहते हैं कि जाओ जी इमाम के नाम पे जाके जो है मदरसे में चले जाओ। जाहिर है कि अब इदारा और वहाँ के असातिज़ा जो भी कोशिश करेंगे इसको कितना पॉलिश करेंगे, वो आईक्यू लेवल तो हो। तो ये रवैया हमारा बदलना चाहिए, हम अपने बेहतरीन आईक्यू लेवल वाले जो अफराद हैं उनको मदारिस में भेजें ताकि वहाँ से रिटर्न भी हमें अच्छा मिले। दूसरी चीज़ जो मदारिस के साथ हमारे मुआशरे का रवैया बेहतर नहीं है वो ये है कि हम बाकी चीज़ों में तो खर्च करते हैं, आज़ादारी की मुख्तलिफ चीज़ों में खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जो आदमी मिसाल के तौर पे 10-15 देग जो है वो न्याज की कर सकता है और करता है, लेकिन जब उससे मदरसे के हवाले से मदद मांगी जाए तो वो 10 रुपए देने के लिए भी आमादा नहीं होता। अब वहाँ पे सहूलियात जो है वो किस तरह की क्या हो, वो जाहिर है असरअंदाज होते हैं वहाँ के माहौल पे, वहाँ के तालिब इल्मों के और वहाँ के मसाइल पर। कई मदारिस मैंने ऐसे देखे हैं कि जो जो सिर्फ इसी मसले में मुबतला हैं, फंसे हुए हैं, निकलते ही नहीं है इसमें कि बाकी कुछ सोच सकें। तो परेशानियां हैं हमारी इल्मी, हम तहरीक को मजबूत करें तो इसमें से अच्छे लोग जो है वो निकलेंगे और फिर मुआशरे की कयादत बेहतर होगी, हम जो है निज़ाम विलायत और निज़ाम इमामत की तरफ जो है वो बेहतर लोग हमारे जो है बेहतर रहनुमाई कर पाएंगे। तो सबसे अहम तरीन जो इस वक्त हमारी ज़रूरत है वो ये जो हमारी इल्मी तहरीक है इसके साथ मुआशरे का रवैया बेहतर होना चाहिए ताकि वो अपना किरदार जो है मुआशरे में अदा कर सके। जी
जी हसन जवाद,
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी, आगे साहब, मैं मेलबर्न से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा सवाल ज़िमनी है कि शिया और सुन्नी दोनों ही अफरात और तफरीत का शिकार हैं असहाब रसूल को लेके। एक तो आप अहले सुन्नत का जो आपने बयान किया वही कि सब के सब आदिल हैं, सब के सब से हदीस ले सकते हैं, चाहे कुरान ने उन्हें फासिक, एक सहाबी को फासिक भी बोला, कुरान ने जहाँ साबकून अव्वलून के साथ बयान किया वहां अगली आयत में कहा कि इर्द गिर्द बद्दू जो हैं उस शदीद निफाक का शिकार है, और आगे कहा कि वो ऐसे भी हैं जो गुनाह भी करते हैं और दोनों काम करते हैं, बुराई भी और नेकी भी, और खुदा उन पर। तो असल लेकिन अहले तशई की मैं अगर बात करूं तो अहले तशई में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद सिर्फ चार सहाबी रह गए थे। ये हदीस कई दफ़ा अहले सुन्नत कोट करते हैं कि रसूलुल्लाह का एक पूरा माशरा आपने तश्कील दिया, मुआखात की, अंसार का एक बहुत बड़ा रोल है, फिर गज़वात का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें हम सबको जीरो कर देते हैं। अहले सुन्नत का तो आप बयान कर रहे हैं लेकिन अहले तशई में ये अफराद और तफरीत दोनों एंड के ऊपर है कि वो सारों को ही जीरो कर देते हैं, चार जो जाने सारान जो करीब तरीन अफराद हैं उनके अलावा। तो इस पे
जी
आप आपकी क्या राय होगी?
जी बुनियादी तौर पे ये जो रिवायतें हैं रसूल अकरम के बाद जो है चार या तीन या चार सहाबी, ये कोई जिसको कहते हैं कि इस्लाम से फिरना नहीं है। ये जो कहते हैं कि इर्तदाद है, ये उससे नहीं है, ये गदीर से इर्तदाद है। यानी रसूल अकरम ने गदीर में जो ऐलान किया था उस पे कायम नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चार रहे, चार तो इब्तदा है, उसके बाद बहुत सारे आए हैं जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ मिले हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी खिलाफत पे आते हैं तो उनमें आप लश्कर में देख लें कितने हैं जो बदरी सहाबी हैं, कितने हैं जो ये बेहत रिजवान वाले हैं, कितने वो हैं जो रसूल अकरम के उमूमी सहाबी, वो सारे वापस आए हैं गदीर की तरफ, तो उन सबको जो है कबूल करते हैं। ये सिर्फ जो है रवायत सिर्फ एक लेके और उसको जो है फिट करना, ये दुरुस्त नहीं है। अगर इस तरह है तो एक और रिवायत जो है अहले सुन्नत के पास है, जो उमूमन मशहूर तो नहीं है लेकिन है, वो ये कि हजरत बीबी आयशा फरमाती हैं कि रसूल अकरम के बाद जो है वो पूरा अरब आतिबतन मुर्तद हो गया था, सवाए दो मस्जिद के, एक जो है मस्जिद मदीना और एक जो है मस्जिद मक्का, इन दो शहरों के अलावा बाकी सब मुर्तद। ये भी तो वही बात हुई जो उस तरह की जो है चीजें, कातिबतन पूरा अरब जो है वो मुर्तद हो गया, जबकि उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो हुकूमत के मुखालिफ थे और सिर्फ जकात न देने के हवाले से थे, उनको भी मुर्तद करार दिया गया। अब वो मुर्तद नहीं है जो इस्लाम से मुर्तद, वो सिर्फ जो है हुकूमत कबूल न करने के हवाले से। इसी तरह से ये जो रिवायात शिया हैं, दो रिवायतें हैं या तीन हैं मैंने देखी है, तो वो रिवायत जो है वो गदीर से इर्तदाद है और वो भी एक मखसूस वक्त के लिए रसूल अकरम के वफात के फौरन बाद, तो उसके बाद फिर वापस आए हैं और वापसी जो है जल्दी शुरू हुई है, रसूल अकरम के वफात के चंद दिनों बाद फिर जो है वापसी शुरू हो गई है। और जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी खिलाफत पे आए फिर तो हजारों सहाबा थे जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे और हम उनको जो है कबूल करते हैं, उनकी रिवायात भी कबूल करते हैं, उनको आदिल कबूल करते हैं, उनकी रिवायत हमारे पास मौजूद है रिवायात में। शहीद जो है मुर्तजा अस्करी, वाकई मुर्तजा अस्करी, उनके सहाबा के हवाले से बहुत सारी किताबें हैं, एक जो है 150 सहाबी जो के तारीख में है ही नहीं, सिर्फ जो है रिवायतें गढ़ने के लिए बनाए गए, एक जो है वो सैफ इब्ने उमर के हवाले से जो उसने ये अब्दुल्ला इब्ने सबा के हवाले से किताब है, इसी मुहक्किक की जो है तहकीक है, वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि शिया और सुन्नी के दरमियान जो इख्तलाफी सहाबी हैं वो 20 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20 सहाबी हैं जो इख्तलाफी है, बाकी इख्तलाफी नहीं है। तो ये उमूमन जो हमारा मेंबर है वो सही तौर पे इसको बयान नहीं करता, अपनी जगह पे है लेकिन इल्मी तौर पे जो है इसको सही तौर पे बयान करना चाहिए। और जो रसूल अकरम के सहाबा आदिल हैं उनसे हम रिवायतें भी लेते हैं, हमारे किताबों में रिवायतें मौजूद हैं उनकी और वो सैकड़ों की तादाद में है, ऐसा नहीं है कि कोई कम तादाद। जी
सामी साहब मुश्तबा जैदी,
जी
एक मरतबा फिर आपने सही तरफ निशानदेही की एक सिमत में कि हम अपने सबसे नाअहल घर के फर्द को कहते हैं कि पुत्र तू टोपी पहन ले और मौलवी के पास जाके बैठ जा, तो जाहिर है तो जिस तरह का स्टफ हम देंगे उस तरह का निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी तो बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर हमने इस इल्म और हिकमत की विरासत को जिंदा करना है और इस लेवल पे लेके जाना है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ले, उस जब ऑब्जेक्टिव और टारगेट वो है हमारा कि पूरे आलम पे वो करें, तो उसके लिए वो कयादत फराहम करने के लिए उस उन दर्जगाहों की भी तो बड़ी मेजर ओवरहॉल की जरूरत है। जबकि हमें नजर ये आता है कि एक दुनिया के निजाम में अगर 50 कांस्टेबल पुलिस के भर्ती करने और सबको 50-50 हज़ार, जिससे उनके खर्चे उनके जायज खर्चे लाख रुपए और तनख्वाह 50 देते हैं, तो उन्होंने 50 हज़ार की रिश्वत तो लाजमन हर महीने लेनी है। कोई फरिश्ता सिफ्त होगा कि जो एक दो जो अपने सारी जरूरियात को काट के उसी में गुजारा करेंगे। तो निजाम अगर उस 50 की बजाय 10 बंदे रखें और लाख की जिसमें गुजारा होता था उसकी बजाय 5 लाख दें, और फिर देखें कि निजाम कैसे अच्छा चलता है। और दुनिया में ये मैन पावर को बढ़ाने से नहीं, कैपेबल और मेरिट पे और काबिल कयादत से होता है। तो हमने जो हौजों का निजाम देखा है कि एक बहुत ही हकीर एक एक मौलवी, एक एक जो मुज्तहिद के मरकज से इतना हकीर, क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों से जुड़ा हुआ हूं, तो इनको उधर से क्या मिल रहा है, 8,000 रुपए, उधर से क्या मिल रहा है, 10। यार आप इन लाखों की वो करने की बजाय आप हजारों नहीं सिर्फ सैकड़ों पे आ जाएं, लेकिन उनको वो आलीशान और बाइज्जत बावकार वो दें कि फिर लोग, अब मेरा जैसा बंदा सोचता है कि यार मैंने बच्चों को जिस तरह तरबियत की है, माहौल दिया है, और ये उसके बाद जाने के बाद, और मैं कोई जद्दी पुश्ती जायदादें छोड़ के मरने वाला नहीं हूँ, एक डिसेंट लाइफ गुजारी है बस, उसके बाद ये अपने वो करेंगे तभी जिंदगी गुजार सकेंगे। और हौजों में जाने के बाद इनको फकीराना अमाउंट से इनकी इज्जत नफ्स मजरू की जाएगी। तो जो पुलिस वाले के पास बेचने को कानून था, मौलवी के पास बेचने के लिए दीन है, तो वो दीन को फिर इसीलिए मिंबर पे जो लोग जो बुलाते हैं, वो जो चाहते हैं पसंद करते हैं, वो जो और जो अवाम चाहते हैं, वो अल्लाह की चाहत वाला दीन बयान नहीं करते। वो जो साहिबे मजलिस है, आपने मुझे बुलाया, मैं मौलवी हूं, तो मैं आपकी पसंद के मुताबिक बोलूंगा, और जो अवाम जिसमें वाह वाह करेगी, अल्लाह को जो पसंद है वो मेरा टारगेट में है ही नहीं। तो ये इसलाह शुरू होनी चाहिए उन हौजों और उन बड़े बड़े इदारों से जहां पे ये फकीराना निजाम राइज किया हुआ।
जी, बुनियादी तौर पे मैं उसी अपनी तजवीज की तरफ वापस आऊंगा, क्योंकि ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल को तोड़ना है ना, हमने ये कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने का तरीका वही है, जब हम एक IQ लेवल अच्छे वाले बच्चे भेजेंगे, वो जब अच्छे एक जो है IQ लेवल लेके निकलेंगे, तो वो थोड़ा सा अपने जो है इदारे के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, फिर वो बेहतर जो है हम अगली नस्ल जो है उनको देंगे। फिर ये इसी तरह से तो साइकिल जो है टूटेगा ना, वरना तो ये साइकिल है। आगे जैसे हो रहा है, हम यूनिवर्सिटी के निज़ाम में भी यही देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी कल्चर और डिफरेंट जो करप्शंस हैं इसमें, उसकी वजह से जो तालिबे इल्म निकल रहे हैं वो जो है वो कैपेबल नहीं है, और वही तालिबे इल्म फिर यूनिवर्सिटी में जाके इंतजामिया और असातिज़ा बनते हैं, और फिर जाकर निज़ाम जो है वो अफराद जाते हैं। ये वही साइकिल साइकिल है। इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। कहाँ से तोड़ेंगे? ये तोड़ने का
ये
तरीका यही
जो
है।
जो मैं आपसे माजरत के साथ आपकी ताबीज से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि इंतहाई अच्छे जवान आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से जो बहुत जज्बा लेके आते हैं, लेकिन हुकूमती करप्ट निजाम में, पुलिस कस्टम ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद, वो चाहे अच्छे खानदानों के अच्छे तालीम याफ्ता मेरिट पे आए हुए बच्चे तबाह हो जाते हैं, या तो तंग आके वो, मैंने खुद एक महकमे को इसलिए छोड़ा जब मैंने ज्वाइन किया MSc के बाद, क्योंकि उसके बगैर, आप रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं चलता, आप ना भी लें तो आपको जैसे कहते हैं ना कि कोने में बिठा दिया जाता है। तो निजाम को पहले बदलो, वो निजाम आप लोगों की इज्जत है ना, पहले आप वो उस निजाम को जो आपके मराकिस की है उसकी इसलाह कीजिए। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप 5 लाख लोगों को दुनिया भर में 20,000 दे रहे हैं, आप 5 लाख से 5,000 पे आ जाएं, काबिल बंदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका सिस्टम ही परमिट नहीं कर रहा उनको। और जो आएंगे भी अच्छे घरों से, वो फिर इसी अजाब में मुब्तला होंगे जो हुकूमती सिस्टम में मौजूद है, अच्छे घरों के काबिल मेरिट पे बा इखलाक बच्चे और बच्चियां आके उस गंदे सिस्टम में वो होके वो उसी का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलाह वहां से शुरू होगी।
ठीक है, इसमें आपकी ये बात तो सही है बिल्कुल, कि निज़ाम से हो, लेकिन निज़ाम को भी तो कैपेबल लोग जो है वो बदलेंगे ना। अब वो कैपेबल लोग हम कहाँ से लाएंगे? इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारी अपनी जो दीनी तालीम और इल्मी जो तहरीक है उस हवाले से। उमूमन हम जो वहाँ पे तालिब इल्म दे रहे हैं वो तो लो क्वालिटी वाला है। अब वही आके फिर उस्ताद बनता है, जब वही आके उस्ताद बनता है तो उससे हम वो तो कैपेबल नहीं है बेहतर निज़ाम बनाने का। अब बेहतर निज़ाम कौन बनाए? बेहतर निज़ाम बनाने के लिए कैपेबिलिटीज चाहिए। अब वो कैपेबिलिटीज जो है वो जाहिर के तालीमी इदारा देगा, तो शुरू तो वहीं से होगा। बाकी जो ये मुआशरे में सियासत का, और वो तो है, वो तो अलहदा एक बहस है कि एक मुआशरे को बदलने के हवाले से क्या करना चाहिए। उसके लिए सिर्फ तालीम का निज़ाम नहीं चाहिए, उसके लिए और भी चीज़ें जो है चाहिए। लेकिन हम जो बहस कर रहे थे वो अपनी इस मजहबी दीनी हवाले से बहस कर रहे थे कि हमारी इस साइकिल से हम कैसे निकले। तो उसमें बेहतरी यहाँ से आएगी कि हम बच्चा अच्छा भेजें, और नंबर दो उस इदारे की मदद भी करें ताकि वहाँ से एक हद तक थोड़ा सा कैपेबल जो आदमी निकलेगा वो अगला जो अपना इदारा कायम करेगा वो इससे बेहतर जो है कायम, और इस तरह से फिर ये जो है हम साइकिल से निकल पाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ पे जमा होके हम कहें कि जी अच्छा निज़ाम हमने बनाना है, वो अच्छा निज़ाम आखिर बनाए तो उसके लिए फिर अफरादी कुव्वत चाहिए। वो अफरादी कुव्वत कहाँ से हम लाएं इस दीनी मजहबी जो है इल्मी तहरीक को मजबूत करने के लिए? जाहिर है वो हम देंगे तो आएगी। तो बहरहाल ये है, ये बहस चलनी चाहिए और जारी रहनी चाहिए, और इस पे कोई कदरन भी नहीं होनी चाहिए, इस पे खुल के बहस होनी चाहिए। जैसे आपने अपनी राय दी है कि बहुत ही अच्छी जो है राय है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा तब तक जो है वो हमारी सूरत हाल इसी तरह से रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, जरा बराबर शक नहीं है। लेकिन अगला फिर सवाल वहां पे आ जाता है कि ये निज़ाम फिर कौन बदलेगा? अब ये निज़ाम जो है बदलने के लिए फिर कैपेबल अफराद चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो फिर ये एक साइकिल, कहीं से तो हमने साइकिल इसको तोड़ना है। मेरे ख्याल में जो टूटता है वो यहाँ से टूटता है। मजीद इस पे बहस होनी चाहिए और कौम और मिल्लत को जो है इस पे बहस करनी चाहिए और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए, जो कि एक जिसको कहते हैं कि नतीजा भी दुरुस्त हो और पूरी कौम नहीं तो अक्सरियत उस पे जो है इत्तफाक कर। अच्छी आपकी बातें हैं और अल्लाह तबारक तआला आपको जो है इसकी अजर अता फरमाए।
जी आगा एक सवाल आया ये कि क्या हम ये कह सकते हैं कि सहाबा की तीन किस्में हैं। एक वो जो रसूल अल्लाह को अल्फाज और दिल से हिमायत करते थे, दूसरी वो सहाबा जिन्होंने दिल से नहीं सिर्फ अल्फाज से हिमायत की, और तीसरे वो जो माल गनीमत के लिए रसूल अल्लाह की हिमायत की।
ये
ये
आपकी तकसीम है, आप कर लें, इसमें कोई हमें एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि असल मसला जो है वो कुछ और है। असल मसला ये है कि अहले सुन्नत जब किसी को सहाबी कह लेते हैं तो फिर उसके साथ पूरे अहकाम हैं उनके लिए। सहाबी कह लिया तो अब ये आदिल लाजमन होगा, सहाबी कह लिया तो अब ये जन्नती लाजमी होगा, सहाबी कह लिया तो अब तो ये अहकाम जो है। बाकी अगर ये अहकाम न लगाएं और फिर आप जो है साहब अभी जो भी तकसीम करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम जो है उसके हवाले से कोई खास नज़रिया इस हवाले से नहीं रखते।
जी आगा आप दुआ फरमा दीजिए।
ये जो हमने कहा साहबा की तीन किस्में हैं जी, ये साहबा के हवाले से एक बहस जो है कल इंशाल्लाह फिर मजीद थोड़ा सा करेंगे, तो शायद बात जो है ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है समझी जाए। इंशाल्लाह कल जो है वो हम कुरान मजीद से हिदायत के निज़ाम के हवाले से बात करेंगे, और फिर आगे जो है आखिरी बहस जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह फिर जो है वो अमली तौर पे हम देखेंगे कि अमली तौर पे हमारे पास निज़ाम अब क्या मौजूद है और किस तरह से चीज़ें होंगी। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم